जोहार, नमस्ते, आदाब श्रोताओं, किताब के पन्नों से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज हम सुन रहे हैं हमारे श्रोता भवानंद पात्रो द्वारा हमारे साथ बांटी ज्योति की कहानी। पिछली कड़ी में हमने सुना किस तरह ज्योति संघर्षों से जीवन जी रही है और उसे भरपेट खाने को भी नसीब नहीं होता है। पेट भरने के लिए वो कूड़ेदान से कुछ भी उठाकर पेट की आग को शांत कर लेती है, लेकिन क्या ज्योति इसी तरह अंधेरों में जीती रहेगी या कभी कोई रोशनी उसके जीवन को रोशन कर पाएगी? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी।
कितना अच्छा हुआ ना, आज मुझे कूड़े में से नहीं ढूंढना पड़ा खाने को। पर ये रोटी का टुकड़ा तो खत्म हो गया, भूख तो अब भी लग रही है। अब वहीं से ढूंढना पड़ेगा कुछ खाने को। सब बोलते हैं कूड़े में से कुछ उठाना गंदी बात है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो वहीं पे कुछ मिलता है खाने को। आज तो यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं? अरे ये क्या है, एकदम से बोलती है। अरे ये तो फोन लगता है, कैसे बजता है?
ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ?
कुछ भी तो नहीं, खाना ढूंढ रही हूँ।
झूठ बोलती है, चोर कहीं की?
चोर?
दिखा हाथ में, क्या छुपा रही है?
क्या हुआ बहन जी?
अरे भाई देखिए ना, ये लड़की कुछ चुरा के भागी है। जब मैंने दिखाने को कहा तो दिखाती भी नहीं।
नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं छुपा रही, ये फोन मुझे यहाँ कूड़े में मिला।
वाह भाई देखो, सब यहाँ आओ, क्या जमाना आ गया है, अब तो फोन भी कचरे में पड़े मिलते हैं। झूठ बोलती है, सच सच बता, कहाँ से चुराया ये, या फिर बुलाओ पुलिस को।
पुलिस को क्यों बुलाते हो, दो थप्पड़ लगाओ, अभी बोल पड़ेगी।
नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो खाना ढूंढ रही थी यहाँ, और ये फोन यही पड़ा मिला मुझे, मुझे नहीं पता ये किसका फोन है।
हाय देखो तो, अब भी कैसे झूठ बोल रही है, लगाओ दो चार और, आ जाएगी अकल ठिकाने पे इसकी।
नहीं नहीं मुझे मत मारिए, मैं सच बोल रही हूँ।
रुकिए, क्यों मार रहे हैं इस बच्ची को आप लोग?
ये चोर है, पता नहीं किसका फोन चुरा कर भागी है और बता भी नहीं रही है।
आपको किसने कह दिया ये फोन चुरा कर भागी है?
इन बहन जी ने।
बहन जी माफ कीजिए, क्या आपने इसे फोन चोरी करते देखा है?
वो मैंने इसे यहाँ कूड़े के पास फोन के साथ खेलते देखा, मुझे लगा इसके पास फोन कहाँ से आएगा, चुराया ही होगा।
बस आपको भी सखी है ना बेटा, आपका नाम क्या है? नहीं अच्छे बच्चे रोते नहीं, चलो पूरी बात बताओ सबको।
अंकल मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं यहाँ पर खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, इतने में आंटी जी ने देखा और वो चोर चोर बुलाने लगी। पर मैं सच कह रही हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम, मुझे ये फोन यहाँ पड़ा हुआ मिला।
आप लोग खुद ही सोचिए, इतनी छोटी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? अगर ये बोल रही है ये फोन पड़ा हुआ था तो मान लीजिए गलती से किसी का गिर गया होगा, इस फोन में उस इंसान को जानने वालों के नंबर तो होंगे ही। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं इस फोन से कोई नंबर निकाल के फोन उसके मालिक तक पहुंचा दूंगा, आप सब जाइए।
ठीक है
जाते हैं भाई,
चलो चलो भीड़ खत्म करो, निकलो सब।
ज्योति बेटा आप जानते हो ऐसे गंदी जगह से उठाकर कुछ नहीं खाना चाहिए।
हाँ अंकल, लेकिन मुझे जब भी भूख लगती है मैं यहाँ आ जाती हूँ, कुछ न कुछ पड़ा मिल जाता है।
बेटा आपके पिताजी या घर में कोई और नहीं है क्या?
है ना, पिताजी है, पर वो हमेशा शराब पीते रहते हैं, उनका पेट शराब से भर जाता है। पर मुझे भूख लगती है अंकल, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, सब मुझे बोलते हैं तेरी वजह से ही तेरी माँ मर गई, मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई थी, इसीलिए सब मुझे ही ऐसे बोलते हैं, कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं, स्कूल पढ़ने भी नहीं ले जाता।
ज्योति बेटा अगर मैं तुम्हारे स्कूल में दाखिला करा दूँ तो तुम पढ़ोगी क्या?
सच अंकल, आप मुझे स्कूल भेज सकते हो, देखना फिर मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, सबका इलाज करूंगी।
तो श्रोताओं कैसी लगी आपको ये कहानी? आखिरकार कोई तो आया जिसने ज्योति के अंधेरे जीवन में रोशनी ला दी, उस फरिश्ते की उंगली पकड़कर ज्योति ने नई उड़ान भरी और एक दिन डॉक्टर बनकर अपने ही गांव के अस्पताल में लोगों का इलाज करने लगी। श्रोताओं हमारे साथ इस कहानी को बांटा है हमारे श्रोता भवानंद पात्रो ने। पात्रो जी ने बताया कि ये सच्ची कहानी है, ज्योति नाम की बच्ची की सच्ची कहानी, और उसकी जिंदगी को रोशन करने वाले फरिश्ते वो खुद हैं। उनकी कल्पना में तो बच्ची के डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है, लेकिन उसे असलियत में पूरा करने की ओर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्रोताओं, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे हमारे साथ आप बांटना चाहते हैं, तो अभी नंबर 3 दबाकर अपनी कहानी रिकॉर्ड करें। अगर आज की कहानी पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो उसे भी हमारे साथ जरूर बांटें, नंबर 3 दबाकर। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन श्रोताओं, आप अपनी कहानी रिकॉर्ड किए बिना कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद।